एजाज सईद साहब का मजमून झटका रोजनामा जंग में 15 फरवरी 2022 को शाया हुआ। इमरान खान हुकूमत का कड़ा दाखिल होने के बावजूद मुझे हुकूमत जाती नजर आती है ना अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदब एतमाद की कामयाबी की कोई सूरत नजर आ रही है। ताहम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ ऐसे वाकया रूनुमा हुए हैं जिससे फजा में हलचल और खेल में दिलचस्पी पैदा हुई है। इन वाकयात में सबसे पहले 5 फरवरी 2022 को लाहौर में आसिफ अली जरदारी की लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात है। इस मुलाकात में पुराने खिलाड़ियों के साथ नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। जरदारी की सियासत को समझने वाले लोग इस बात से आशना हैं कि वह अपने पत्ते खेल कर मर्जी का सियासी मंजरनामा तश्कील देने के खूब माहिर हैं। इस बार भी जरदारी साहब ने यही किया। नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात से कबल ही कुछ मामला तय थे। इब्तदा में गुंगुओं से मट्टी झाड़ने के मसादिक कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की पेशकश की गई जो नवाज शरीफ की तरफ से काबिल कबूल ना थी। पीपल्स पार्टी को इस बात का पहले से पता था। दौरान खाना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में राजा परवेज अशरफ का नाम वजीर आजम के तौर पर सुना जा रहा है। ताहम कोई नया नाम सामने आने में बड़ी कयास नहीं। इस अहम मुलाकात के बाद 11 फरवरी को PDM रहनुमाओं ने भी तहरीक अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी की तजवीज पर आंख कर दी, यानी खेल में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो गए। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद 3 और अहम वाकयात रूनुमा हुए। इसमें सबसे अहम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने 9 फरवरी 2022 को 2018 के आम इंतखाबात में दोहरी शहरीयत के बारे में झूठा हलफनामा जमा कराने पर नाअहल करार दे दिया। इससे एक तरफ अपोजिशन खुश हुई तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की साख बहाल हुई है जो आगे जाकर बल्दियाती और आम इंतखाबात में इस्तेमाल की जाएगी। बादशाह को बचाने के लिए प्यादे कुर्बान कर दिए जाते हैं। उधर बलूचिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से तश्कील दी गई बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप ने अचानक हलचल शुरू कर दी। इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ तो इस जमात के वजीर आला से बलूचिस्तान में खुश नहीं, साथ ही साथ इस्लामाबाद में उस जमात के अरकान ने वफाकी काबीना में कम से कम 4 वजारतों का हिस्सा मांग लिया है। 11 फरवरी 2022 को सेनेट इजलास में बाप के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर प्रिंस उमर दाऊद सईद की क्यादत में बाप सेंटर जब ऐवान से बाहर निकले तो उनसे आमना सामना हो गया। पूछा, आपकी जमात तो इशारों के बगैर नहीं हिलती? जवाब आया, हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, कहा गया है कि अपनी जंग खुद लड़ो। जब पूछा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो क्या अपोजिशन का साथ देंगे, उमर दाऊद ज़ई ने कहा, नहीं जनाब, हम हुकूमत के साथ और साथ ही रहेंगे। ये सेंट्रल डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मनाने पर वापस जाने लगे तो इनमें शामिल एक मौजूद सेंटर ने मुझे अलग होकर बताया कि हमें इमरान से अलग होने का कोई इशारा नहीं, हाँ हम हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं, सरपरस्त वो हिस्सा नहीं दिला सकते, इसलिए कहा गया है कि खुद कोशिश कर ले जो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम हलचल आज़ाद कश्मीर में भी हो रही है जहां तहरीक इंसाफ के वजीर आजम सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी के खिलाफ इन्हीं की जमात के सरदार तनवीर इलियास तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहरिक हैं। ये साहब पैसे और इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ना बन सके, मगर अब पैसे के बलबूते पर मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कम वेश 15 अराकीन की हिमायत का दावा कर रहे हैं। अगर पीस पार्टी के 12 अराकीन ने तनवीर इलियास की हिमायत कर दी तो 53 अराकीन की असेंबली में ये साहब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को शिकस्त देकर नए वजीर आजम बन सकते हैं, मगर इसका चांस इसलिए कम है कि उनके पास असल में 15 नहीं 6 या 7 अराकीन है। वहाँ सदर सुल्तान महमूद अपना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। آزاد کشمیر کی سیاست کا انحصار بھی مرکز پر ہی ہے. اسلام آباد، لاہور، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں ہونے والے ان واقعات کا براہ راست اثر وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار پر پڑ رہا ہے. بظاہر تو بند مٹھی میں ریت کی طرح اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. اب تک تروپ کا پتہ انہی کے پاس ہے. جب اپوزیشن کے سیاستدان ملاقاتیں کر کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے دعوے کر رہے تھے، اس وقت عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک طاقتور شخصیت کے گرو سے ملاقات کر رہے تھے. ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ منتخب وزیر اعظم اپنے ہی کسی افسر کے گھر چلا جائے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی بحیثیت وزیر اعظم ان کے گھر چلے گئے تھے. پاکستان میں اقتدار بچانے یا مستحکم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ایک معمول بن چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے دائیں بائیں رہنے والے ایک غیر معمولی وزیر سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کو اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ؟ جواب آیا، وزیر اعظم کو پورا اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن وزیر اعظم الرٹ بھی ہیں اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اقتدار کی بے نیاز راہداریوں کے چغادریوں سے سنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ اور ایک اہم شخصیت کے مستقبل کے حوالے سے دو حکم نامے خاموشی سے صدر مملکت سے دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں. ان حکم ناموں میں کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اقتدار کے کھیل سے آگاہ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس ایک اختیار ہے جو ان کے اقتدار میں ڈٹے رہنے کی ضمانت ہے، اور وہ اسی اختیار کو اپنے وقت پر اپنے مفاد میں استعمال کریں گے. کوئی کچھ کر لے، تحریک عدم اعتماد لانے والی جماعتیں فی الحال وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں، مگر اپوزیشن کے اس اقدام سے فی الحال پرسکون سیاسی ماحول کو ایک جھٹکا ضرور لگا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے دعوے کے مطابق یہ جھٹکا زلزلے میں بدلتی ہے یا خود جھٹکے کا شکار ہوتی ہے.